ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी दीदी, बिंदु दीदी, जिनकी हम दो दिन से लगातार पालना ले रहे हैं। बड़े ही आप सरल स्वभाव के, कहते हैं कि आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले वही संत है। तो ऐसी ज्ञान की प्रतिमूरत, जिनके जीवन से प्रेरणा मिलती है, जिनके शब्द हमें ताकत देते हैं और जीवन को खुशहाल कर देते हैं, ऐसी परम आदरणीय बिंदु दीदी का आज इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बाबा बिंदु है और बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, तो ऐसी आदरणीय बिंदु दीदी में सिंधु बाबा समाया हुआ है। आदरणीय दीदी के साथ में हमें भी 8-10 दिन अभी रहने का मौका मिला। हम सभी बहनें आगरा जोन की करीब 15 बहनें और एक भाई गए थे, 15 बहनें एक भाई, 16 लोग गए थे तमिलनाडु और केरल। तो वहां पर अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा ही आनंद आया। जो भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगम हैं, जिसमें एक रामेश्वरम बड़ा विशेष एक तीर्थ है, तो वहां जाने का आपके साथ में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय दीदी, हमारी 1977 से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आपने पंजाब से ज्ञान लिया, 1982 में आपने अपने जीवन को बाबा के प्रति समर्पित किया और आप वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में, दोनों में ही प्रांतों में आपने सेवाएं दी हैं। इस समय वर्तमान में आप सिरसा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के आप जोनल एडिशनल आप कोऑर्डिनेटर हैं जोन के। तो आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन स्वागत है। मैं दीदी के लिए शब्द कहूंगी, ज्ञान की गंगा जब बहती है, ज्ञान की गंगा जब बहती है तो अज्ञान को, अज्ञान के तम को हर लेती है। ज्ञान की गंगा जब बहती है तो अज्ञान के तम को हर लेती है। पवित्रता की जो प्रतिमूर्ति, वह आत्माओं को ईश्वरीय संग से जोड़ देती हैं। तो ऐसी हमारी परम आदरणीय बिंदु दीदी हम सबको ईश्वरीय संग से जोड़ने के लिए, यानी कि संग माना उसके साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए, किस प्रकार से हमारा मजबूत हो, उसके लिए सब्जेक्ट है आज का, विषय है दीदी का, कि ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणाएं क्या है। तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करती हूँ कि हम सबके बीच में ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी हम सबको एक आगे बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए ऐसी धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं हम सबके बीच में रखेंगी आदरणीय बिंदु दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा करके बोलेंगे सभी, ओम शांति। आज हम सब ने बाबा के महावाक्य सुने। उन महावाक्यों में भी सूक्ष्म धारणाओं की बहुत बातें आई हैं। बाबा की रोज की मुरली के माध्यम से धारणाओं की ही बात होती है, अव्यक्त मुरलियों में विशेष तौर पर धारणा की बातें होती हैं। साकार मुरलियों में सागर की लहरें हैं, वो किधर भी लहर अपना रुख परिवर्तित कर सकती है। कोई भी सरकार को चलाने के लिए कुछ उस सरकार का, जैसे भारत सरकार है तो कुछ संविधान है, कुछ नियम है, कुछ लॉज हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, और जो भी संविधान में लॉज लिखे हैं अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको अपराध माना जाता है, और उल्लंघन होने पर कोई एक्सक्यूज भी नहीं होता है। क्योंकि हम इंडियन हैं तो ये जरूरी है कि हम इसके लॉज वाई लॉज को जानते होने चाहिए। इसलिए कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। कोई कहे कि रोड पे लेफ्ट हैंड में चलना होता है, मुझे तो पता ही नहीं है भारत में, मैं तो विदेश से आया हूँ, वहाँ तो हम राइट साइड में चलते हैं। जब कोई भी इंडिया में रह रहा है तो ये जानना उसका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। इसीलिए ये कहावत बनी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। अब हम पांडव गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, उसका भी एक संविधान होता है, और ब्रह्मा कुमारी इसका भी, बाबा के घर का भी अपना संविधान है। और आप सबको मालूम होगा कि संविधान की एक बहुत मुख्य नियम है कि सेवा केंद्रों की इंचार्ज हमेशा फीमेल अर्थात बहने ही रहेंगी भारत के अंदर। इसलिए भारत में ऐसा कोई सेवा केंद्र नहीं जिसमें ये लिखित में हो कि इसका इंचार्ज फला भाई है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ब्रह्मा कुमारी का संविधान क्या कहता है। अभी हम बात करें सूक्ष्म धारणाओं की। कल आपको अनीता बहन जी ने क्लास कराई जिसमें बताया कि जो मोटी मोटी धारणाएं हैं टेम्परेरी, ये परिवार को या समाज को असुविधा देती हैं, लेकिन वो असुविधा में ना रहे, उनके लिए सुविधाजनक हो जाए आपकी ये धारणाएं, उसमें सूक्ष्म धारणाएं काम करती हैं, स्वभाव संस्कार काम करते हैं। मुझे याद आ रही है एक बार एक माता जी थे हमारे पास, वो समर्पित हो गए थे, तो एक बार एक एडवोकेट भाई आते थे, काफी अच्छे थे, उनका सब कुछ बहुत अच्छा था, संस्कार भी अच्छे थे, बाबा से प्यार भी अच्छा था, लेकिन वो कभी कभी सिगरेट पी लेते थे। तो वो माता ने उनके घर गई होंगी, उसकी वाइफ से कुछ बातें की इधर उधर की, ये दीदी तो अच्छी है ये नहीं, थोड़ी पहले ज्ञान की बात की फिर इधर उधर की बातें की, और फिर वो वकील साहब को कहती है, भाई साहब इतने साल हो गए आप में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप ये थोड़ा सा सिगरेट छोड़ दो ना तो आप बिल्कुल सोना। तो उनसे उम्र में तो बहुत बड़ी थी, तो उसको कहता माता जी जिस दिन आप ये निंदा गलानी छोड़ देंगी ना उस दिन वकील सिगरेट छोड़ देगा। अब उसने माता जी की इज्जत की, बेइज्जती की, क्या किया? वैसे तो उस विचारे ने कोई बेइज्जती भी नहीं की, उसने रियलिटी बताई, मतलब ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बचा भी क्या। इससे बड़ी इंसल्ट अगर कोई एक अपने आप को बहुत ज्ञानी कहलाए और वो इधर उधर की बात करे ज्ञान योग के सिवाय, और सामने से इस प्रकार का आंसर मिले, तो क्या बचता है हमारे पास। वैसे ये धारणाएं कोई सूक्ष्म नहीं है, इनको सूक्ष्म क्यों कहा है, क्योंकि इस पर हम गौर नहीं करते। हम ये गौर तो करते हैं, जैसे बहन जी ने कल काफी कुछ आपको कहा धारणाओं की बात, कि हमें उन धारणाओं का अभिमान होता है। हमारे बाजू में बठिंडा में बेकरी के बिस्किट आदि बनते हैं, एक माता ने एक दो बार कहा होगा कि बिस्कुट मंगवा दो, वो नहीं मंगवा सके, मेरे को कहती अगर आपने अभी बिस्कुट ना मंगवा के दिए ना हम तो फिर खा लेंगे बाजार वाले। मैं क्या मेरे सिर को ये एहसान है? वो आपकी इच्छा है। अगर इतना एहसान है कि बिस्कुट हम इसलिए नहीं खा रहे कि आप हमें वहां से लाके देते हो, समझो वो बेकरी बंद हो जाती है, फिर आप बिस्कुट खाए बिना नहीं रह सकते ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो एक दिन आना ही है दिन, ये बेकरियां आती तो सब बंद हो जाएंगी, फिर आप 50 साल धारणा करके 51वें साल खाओ तो क्यों नहीं पहले ही खा लो। मतलब एहसान, स्थूल धारणाएं हम करते हैं, फिर उसका एहसान भी करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, लेकिन बिना सूक्ष्म धारणाओं के, बिना स्वभाव संस्कार की धारणाओं के, बिना बोलचाल की धारणाओं के, हमारी स्थूल धारणाओं का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तब महत्वपूर्ण है जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ साथ। समझो कोई एक सरकारी ऑफिसर है, बहुत अच्छा है, उसको अपने फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज है और उसकी नॉलेज बहुत मशहूर भी है, परंतु वो एक भिखारी को एक फुटपाथ पे बैठा देखता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, क्रोध करता है, भिखारी को थप्पड़ मारता है, और आपने दोनों सीन देखे हैं, उसकी नॉलेज भी देखी है, उसकी हार्ड वर्किंग भी देखी है, बट उसका क्रोध भी देखा है और उसको थप्पड़ मारते भी देखा है, आप क्या सोचेंगे उस ऑफिसर के लिए? इसको ना एक बिहेवियर साइंस कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन बिहेवियर साइंस अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप समाज में फेल हो जाएंगे। जिसको बाबा की भाषा में कहते हैं सत्यता और सभ्यता, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें इस तरफ अभी ध्यान देने की जरूरत है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है? आज की मुरली में बाबा ने फायर ब्रिगेड का टाइटल दिया, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे सब मित्र हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। शांति दूत है, रूहानी मिलिट्री है, तुम्हारा बैज पड़ा रहे, तुझे सारी बातें भी हमारी सेवा का एक साधन अवश्य बनती है। तो बाबा ने मुख्य बातें जो धारणा की बात हम कर रहे थे आज की मुरली की, तो ये कुछ बातें आपने बताई। इसके अलावा बाबा ने कहा संदेश दो सबको, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार। पवित्रता की बाबा ने ये भी एक फुल फ्लैश सब्जेक्ट है परिभाषा बताई है। बाबा मुरली में कहते हैं अगर तुम उदास हो गए ये भी पाप है। बाबा ने दो चार दिन पहले कहा उदास पवित्र आत्माएं उदास हो ही नहीं सकती। उदास होना क्यों पाप है? अब कोई उदास है, थोड़ा मन ठीक नहीं है, मूड ऑफ है, आप उनको कहते हो कि क्या हो गया, वो कहते आप ना मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ कह तो नहीं रही ना, मान लो मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मेरा मूड ऑफ है, लेकिन मैं किसी को तो कुछ नहीं कह रही। अब वो मुख से कुछ नहीं कह रहे लेकिन उसके वाइब्रेशन वातावरण में उदासी के फैल रहे हैं, मूड ऑफ के फैल रहे हैं, उसको जो ख्याल है फीलिंग है उसके भी वाइब्रेशन क्या वायुमंडल में नहीं फैल रहे? उसके संकल्प, उसके कर्म, उसके वाइब्रेशन बहुत कुछ कह रहे हैं। इससे लौकिक घर हो या अलौकिक घर हो क्या वातावरण खराब नहीं होगा? तो फिर इसका बोझ किसके सिर चढ़ेगा? इसलिए उदास होना भी पाप है, परेशान होना भी पाप है, क्योंकि जितनी ऊंची नजर से बाबा हम बच्चों को देखता है ना, हम खुद को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखते। बाबा जब हमसे बात करते हैं तो हमें देवता रूप में देखते हैं, ये होबनहार देवता बैठे हैं। लेकिन हम जब बाबा की बातें सुनते हैं, खासकर प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने क्या सोचते हैं, बातें तो बाबा की बिल्कुल ठीक है लेकिन घर वाले कोऑपरेट तो नहीं करते हैं। अब घर का भी देखना ही पड़ता है, कितनी सारी बातें हम एक्सक्यूज देते हैं। हम तो गृहस्थी हैं, जहाँ कई बातें सहन करते कहेंगे, हम आखिर तो इंसान है, मतलब भगवान देवता बनाना चाहता है लेकिन हम एक साधारण इंसान ही रहेंगे, हम एक गृहस्थी ही रहेंगे। बाबा ने कहा तुम ट्रस्टी हो, गृहस्थी हो ही नहीं, गृहस्थी तो सब जिम्मेवारी बाबा की हो गई। और आज भी मुरली में बाबा ने क्या कहा, घर में रहने वाले सेवा भी ज्यादा कर सकते हैं चाहे तो, मतलब मार्जिन सबके लिए है। किसी मुरली में बाबा ने नहीं कहा ये पॉइंट समर्पित बहनों के लिए है, समर्पित टीम के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए, कभी आया कोई ऐसा पॉइंट? सबके लिए जब सब कुछ समान है इसलिए बाबा कहते हैं चाहो तो सेवा ज्यादा कर सकते हैं, चाहो तो याद ज्यादा कर सकते हैं, चाहो तो पद बड़ा पा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी ऊंची सेवा तो हमें जरूर करनी पड़ेगी ना। कई बार भाई बहन सुन के बड़ा खुश होते हैं लेकिन कंपैरिजन भी कर ले, कितने घंटे मेरे योग में बीतते हैं, कितने घंटे सेवा में बीतते हैं, कितना धन मेरा लौकिक में लगता है, कितना अलौकिक में लगता है, वो सारी चीजों की कैलकुलेशन तो होगी ना। जब पद फिक्स होगा तो वो सब चीजों की कैलकुलेशन तो होगी। तो इसलिए ये जो हमारी स्थूल धारणाएं हैं इनमें बल भरने के लिए और समाज में हमारी स्थूल धारणाओं का पॉजिटिव मैसेज आए उसके लिए जरूरत है हमारी सूक्ष्म धारणाओं की, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो चलो बाबा की मुरली में तो आज बहुत सारी बातें आ गई हैं जो आप सबने सुन ली है। बाबा कभी हमें कहते हैं आप मेरे योगी बच्चे हो, कभी बाबा कहते हैं तुम फरिश्ते हो। अच्छा, योगी और फरिश्ते में क्या अंतर है? योगी और फरिश्ते में अंतर है, योगी नीचे रहता है, बाबा के पास जाते हैं, शक्तियां लेते हैं, फिर धरती पर आकर के बांटते हैं, और फरिश्ता ऊपर रहता है, धरती पर आता है, शक्तियां बांटता है, वाइब्रेशन बांटता है और फिर ऊपर जाता है। तो हम वर्तमान में दोनों रूप धारण करते हैं, कभी योगी की स्थिति में ऊपर जाते, ऊपर जाकर के फिर नीचे बांट के फिर बाबा के पास बैठ जाते हैं। अब धारणाओं की जब बात आती है, क्योंकि बाबा के जो नियम मर्यादाएं हैं ना वो धारणा भी है। समझो हम प्योरिटी की बात करें, ब्रह्मचर्य की, इसको हम धारणा भी कहते हैं, इसको हम मर्यादा भी कहते हैं, इसको हम नियम भी कहते हैं। ऐसे ही प्यार लहसुन नहीं खाना, ये हमारी धारणा भी है, ये हमारी मर्यादा भी है, ये हमारा नियम भी है। इसलिए धारणा कहो, मर्यादा कहो, नियम कहो, बातें तो एक जैसी हैं। ऐसे ही कोई कोई बाबा के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कोई झूठ बोलता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना फिर गुस्सा आता है। तो बाबा के क्या महावाक्य हैं? एक बराबर हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा झूठ बोला उसने आपको पसंद नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसने झूठ बोला आप डिस्टर्ब हो गए, चलो आपने गुस्सा भी नहीं किया, उसने झूठ बोला आप डिस्टर्ब हो गए, ये ठीक है? तो कौन सी धारणा चाहिए? ये भी एक सूक्ष्म धारणा है कि उस समय में डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब होना कमजोरी है, इसको एक्सेप्ट करना है कि डिस्टर्ब होना कमजोरी है और मुझे इस कमजोरी को भरना है। ये भी हमारी एक धारणा है, हम दूसरी बड़ी धारणाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसीलिए सूक्ष्म कहा, छोटी छोटी धारणाएं जो हमारे पुरुषार्थ में विघन है वो धारणा नहीं बन पाती हैं। जैसे कई बार मेरे से ना कोई योग की स्टेजेज पूछते हैं तो नॉर्मल प्रश्न होते हैं ब्राह्मणों के उस रटे रटाई के हिसाब से, ये मनन चिंतन, ये रूरेहान, ये फरिश्ता, ये आत्म अभिमानी, ये सारा कुछ, कितनी सारी स्टेज, विदेही, देही, बीज रूप, ज्वालामुखी, तो पूछते हैं। मैंने कहा ना, ये सारा कुछ एक ही है, जैसे घिया रोज एक ही तरह खाते खाते थक जाता है, तो कभी हम उसको कोफ्ता बना के खा लेते हैं, कभी उसको सिंपल बिना नमक जीरी वाला बना के खा लेते हैं। अल्टीमेटली इन सारी स्टेजेस का लक्ष्य क्या है? बाबा से कनेक्शन जोड़ना और बाबा की शक्तियां लेना। उसको नया नया नाम देख करके हम थोड़ी क्रिएटिविटी उसमें पैदा करते हैं। अब इन स्टेजेस की बजाय मैं समझती हूं कि योग की सबसे पहली स्टेज है अपने आप को आत्मा समझना, ये फर्स्ट स्टेज। अगर आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचे, सोल कॉन्शियस ही नहीं हुए, तो गॉड कॉन्शियस कैसे हो सकते? और मेजोरिटी ब्राह्मण बिना सोल कॉन्शियस हुए बाबा से शक्तियां लेना चाहते, जैसे भक्ति की तरह आदत पड़ी हुई है ना, भगवान के सामने प्रार्थना की, बाबा शक्ति दे दो, मैं एक आत्मा हूँ, बरकुटी के मध्य विराजमान हूँ, बाबा की शक्तियां आ रही हैं, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। तो मैं हंसती हूँ, मैं क्या, जब बच्चे कहते हैं ना, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बाबा कहते हैं कब का कह रहा है बाबा, मैं मन बुद्धि के द्वारा आ रही हूँ, पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम होगी, आई तो आई नहीं। कब से सुन रहे हैं, कितनी बार हम दिन में, या कितने सारे बच्चे जो अभ्यास करते हैं वो रटी हुई कमेंट्री बेस्ड, वो स्टार्टिंग स्टेजेस के लिए है। लेकिन बाबा के बच्चे जब पुराने हो जाते हैं ना, अगर हमारी नेचुरल संस्कार बन गया आत्मा देखने का और आत्मा समझने का, तो उनके लिए योग कुछ नहीं है। जैसे कोई जंक रहित लोहा होता है ना, चुंबक के पास जाते ही खींच लेता है, ऐसे ही हमें जो तेरा मेरा मान शान, ये जो जंक लगी हुई है ना इच्छाओं की, इसको हम बिना उतारे बाबा से बहुत कुछ शक्तियां लेना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उसका प्रयास ना करो, बाबा से ये लेना है शक्ति, ये करना है, बस तुम अपनी जंक उतारो, शुद्धिकरण करो, बाबा चुंबक अपने आप तुम्हारी रस्सी खींच लेगा। उसके लिए कोई भी, दादियों के पुराने क्या अनुभव है, गुलजार दादी जी को जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, दादी को ये पता ही नहीं था, बच्ची थे, कि श्री कृष्ण होता है, जान जे कैसा होता है। उन्होंने जाके बाबा को सुनाया, बाबा मैंने ऐसे ऐसे देखा, उसने ऐसे मुकुट पहना हुआ था, मोरपंख था, बंसुरी थी, तो बाबा ने बताया कि ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार तुम्हें हुआ है। अब उन्होंने कोई इच्छा नहीं रखी, कुछ नहीं किया, लेकिन वो बर्तन इतना शुद्ध था कि बाबा ने अपने आप ही सारे अनुभव उनको करा दिए। तो इसलिए अनुभव करने के लिए कोई मेहनत की बात नहीं है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, इस ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है, नहीं स्थापना होती है माना युग बदलता है, संसार बदलता है, दुनिया बदलती है, कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में बदल जाती है। जिस ज्ञान से संसार बदल सकता है, क्या उस ज्ञान से हमारे संस्कार नहीं बदल सकते? इतने इतने वर्ष हो गए हमें ज्ञान में चलते हुए, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, हमारे संकल्प नहीं बदल रहे, हमारा बोल आज भी कुछ व्यर्थ निकल जाता है। द्रौपदी के एक बोल से देखो महाभारत छिड़ गई थी, कितना जान माल का नुकसान हुआ था। हम ब्राह्मणों का भी एक एक बोल साधारण भी नहीं, रूहानियत से भरा होना चाहिए। ये हमारी धारणाओं की बातें हैं। और एक बहुत बड़ी धारणा है कि हमारा संगठन किला बहुत मजबूत हो, कहीं भी है, लौकिक में है या अलौकिक में है। एक होता है वी आर पार्ट ऑफ टीम, हम टीम का एक हिस्सा है। दूसरा शब्द है पार्ट्स ऑफ टीम, सिर्फ एस एक्स्ट्रा है, पार्ट ऑफ टीम, पार्ट्स ऑफ टीम। अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है, पार्ट ऑफ टीम माना, टीम का हिस्सा है, उनके साथ मिलके काम करना है। एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ज्ञानी। और पार्ट्स ऑफ टीम माना टीम के हिस्से कर देना। जैसे बाबा कभी कभी मुरली में इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं ना, बच्चे कमेटियां बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम पार्ट ऑफ टीम हैं। लेकिन आप पार्ट ऑफ टीम तब बन सकते हैं जब आपकी इंटरनल टीम में आपस में एकता हो। टीम के दो मीनिंग है, स्थूल मीनिंग है टोटल एफर्ट्स बाय ऑल मेंबर्स, TEAM, टोटल एफर्ट्स बाय ऑल मेंबर्स, या टुगेदर एफर्ट्स अचीव मोर। यह स्थूल मीनिंग एक ऑफिशियल लैंग्वेज में। लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो इंटरनल टीम है वो है थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, मेमोरीज। थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, मेमोरीज, ये चारों एक ही दिशा में चलें तो आपकी अंदर की टीम मजबूत होगी, तो बाहर की टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये अंदर की टीम ही पार्ट्स ऑफ टीम है तो फिर बाहर भी पार्ट्स ऑफ टीम ही होंगे। ये आप कभी सूक्ष्म में चेक कर लेना, जो व्यक्ति थोड़ा संगठन को तोड़ने का प्रयास करे, चाहे लौकिक परिवार हो या अलौकिक, उसके अंदर की टीम की सेटिंग सही नहीं होती है। ये आप किसी भी समय नोट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हमारे अंदर बनती कैसे हैं? हमारे मन का भोजन है इन्फॉर्मेशन और हमारे थॉट। थॉट से आगे आगे होता है और थॉट्स का भी बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन कैसे आती है हमारे पास? सुनना, देखना, पढ़ना। कुछ पढ़ते हैं तो अंदर इन्फॉर्मेशन गई, थॉट्स पैदा हुए। कुछ सुना, इन्फॉर्मेशन गई, थॉट्स पैदा हुए। कुछ देखा, इन्फॉर्मेशन गई, थॉट्स पैदा हुए। इस पर बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इधर उधर की बात करते हैं तो कई ब्राह्मण बाबा से दूर हो जाते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि ब्राह्मण की हत्या महापाप है। और हमारे कोई शब्दों द्वारा, हमारे कोई समाचार देने से, आपको पता है वो फलाना क्यों हट गया? उसकी तो धारणा ही नहीं, वो वैसे ही आगे आगे होता रहता है। अब ऐसी बातें हम एक दूसरे से करेंगे, मान लीजिए आप 10 साल पुराने हैं, आप ये बात किसी 4 साल पुराने से कर रहे हैं, भले वो सत्य भी हो, लेकिन उसके मन में क्या जाएगा? जी 10 साल पुराने अभी ऐसे कर रहे हैं तो मैंने कुछ किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस ब्राह्मण को मारने की स्थिति में ला रहे हैं। धीरे धीरे वो बाबा को छोड़ भी सकता है, ना भी छोड़ेगा तो अधमरा सा चलता रहेगा, टूटा फूटा, कोई ना ढंग से धारणा करेगा, ना ढंग से बहनों को साथ देगा, वो चलता ना चलता एक बराबर होगा, तो वो भी ब्राह्मण की हत्या ही है। ऐसे चेक करो कि हम जाने अनजाने में कई ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, उनकी स्थिति की हत्या कर देते हैं। वो बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे होते हैं हमारी इधर उधर की बातों से, ज्यादा नहीं आगे आगे होते होते, हम भी हुए थे किसी समय, इसलिए थोड़ा लिमिट में ही रहा करो। अब उड़ना चाहता है, हम उसके पंख काट रहे हैं, ये धारणा की बातें। इसके साथ मैं बल्कि एक बात और कहा करती हूँ कि दुनिया में कोई निरसंतान मरता है ना, तो उसको बहुत बड़ा मतलब अच्छा नहीं मानते, कहते हैं भी कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ है इसके। और कितने ब्राह्मण निरसंतान मरते हैं, आप सबने बच्चे पैदा किए हैं? देखो उसमें तो एज लिमिट भी होती है, बच्चों की लिमिट भी होती है, कहते हैं एक ही काफी दो से माफी। यहाँ तो आप 1000 पैदा करो, 10 पैदा करो, 5 पैदा करो, जितने ज्यादा पैदा करोगे उतने दीदियां आपका ज्यादा सम्मान करेंगे, नहीं? आप किसी जिज्ञासु को लाते हो कोर्स कराने तो दीदी खुश होती है या नहीं? अगर आप 10-5 को इकट्ठा ग्रुप ले आओ, दीदी इनको कोर्स कराओ, दीदी ज्यादा खुश होगी या नहीं? तो यहाँ बच्चे जितने ज्यादा पैदा करोगे, इसलिए ब्राह्मण लाइफ में किसी को भी निरसंतान नहीं मरना, नहीं तो अभागे माने जाएंगे। तो इसलिए आज हर एक चेक कर ले कि मैंने कितने बच्चे पैदा किए। ऐसे एक बच्चा पैदा होने के बाद उसकी संभाल में बहुत सारों का रोल होता है। हम हर तरह का रोल करें, हम लाने में भी, हम कोर्स कराने में भी, हम उनको पॉजिटिव इनपुट देने में, ये सबसे बड़ी पालना है, तो भी आपको पैदाइश का फल मिल सकता है। अगर कोई बाबा का बच्चा उलझा हुआ है, आप उसको यज्ञ प्रति और बहनों प्रति भावना बिठाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत बड़ी धारणा की बात है। तो इसलिए हमारी जो वृत्ति है, हमारे वाइब्रेशन है, हमारा वायुमंडल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये सूक्ष्म चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। कुछ भी मुख से संकल्प उठा, कुछ भी बोला गया, जैसे भाई साहब ने भी कल संकल्पों की सिद्धि पर बात की हम सबसे, लेकिन हम उस तरफ ध्यान कई बार नहीं दे पाते। इसीलिए हमें योग में विघ्न पड़ता है। ऐसे तो योग का सब्जेक्ट हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट भी है कि हमें अच्छा योग लगना चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, जिसका योग अच्छा उसको प्राप्तियां बहुत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हमेशा स्कोरिंग होता है, लेकिन ये टफ भी है, टफ सब्जेक्ट भी यही है। टफ क्यों है? क्योंकि इसका संबंध हमारी सूक्ष्म धारणाओं के साथ है। जब तक सूक्ष्म धारणाएं नहीं है, तब तक आप अच्छे योगी नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कभी कभी हम बहनों के लिए भी कहते हैं, आप सबके लिए भी, कितने सेंटर खोलें, कितने जिज्ञासु निकालें, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितनों को योगी बनाया, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को वारिस बनाया और खुद की स्थिति कैसी रही, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी स्थिति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अपनी स्थिति को दाम पर लगा करके आप कुछ भी करेंगे तो वो बेकार है। इसलिए अपनी स्थिति को संभाल के रखना, खुद भी योगी और योग्य बनना और वारिस बनना, फिर औरों को बनाना, ये विशेष धारणा की बात हम सबको ध्यान में रखनी है। आप किसी को मुख से बोलो या ना बोलो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी नैनों की भाषा, आपकी संकल्पों की भाषा और आपकी भावनाओं की भाषा, ये तीन भाषाएं, नैनों की, भावनाओं की और संकल्पों की, मालूम पड़ता है। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर हमें ध्यान देना है। और किसी को भी दोषी नहीं बनाना किसी भी बात के लिए। औरों को ब्लेम गेम खेलना बंद करो। बाबा रूज कहते हैं, सारे निर्दोष हैं, अपनी स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। महसूस करो, स्वीकारो और अपने आप को सुधारो। ये एक विधि है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की। अगर हम ब्लेम गेम ही खेलते रहे, चाहे व्यक्तियों पर ब्लेम करें, चाहे परिस्थितियों पर ब्लेम करें, चाहे गरीबी पर ब्लेम करें, चाहे बिजी होने पर ब्लेम करें, चाहे पोजीशन पोस्ट को ब्लेम करें, कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते। सेवा की अनंत विधियां हैं, स्थिति बनाने के लिए अनंत विधियां हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें अपने पर ध्यान देना है। मैं एक बार हंस रही थी, मगर ब्राह्मणों का भी कब एक मिनट में कुछ होता है मालूम नहीं पड़ता। इसलिए किसी शहर ने कहा था, किसी शहर ने कहा, मौसम तो बदलते हैं धीरे धीरे, लेकिन इंसान के बदलने की रफ्तार से तो मौसम भी हैरान है। कैसे एक सेकंड में अभी अभी कुछ कहेंगे, दूसरे सेकंड कुछ कहेंगे। ऐसे भी भाई बहन मिलते हैं, आज कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, 10 दिन कहेंगे इससे ज्यादा खराबी कोई नहीं है, दस साल तो उसको अच्छा अच्छा कहता रहा, दस दिन में वो इतना खराब हो गया, अब कहता जी तो पहले से ही खराब है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, आप जाके कहते हो भगवान मिला है हमें, भगवान आ गया, थोड़े के दिन बाद कहते हो नहीं आया, कहते अच्छा जा तो पहले झूठ बोल रहे थे, जब झूठ बोल रहे हो एक बार तो झूठ बोला ही है ना। मीना पहले आप कह रहे थे धरती पर भगवान आ गया, मैं तो पहचान लिया, तुम भी पहचानो, और महीने बाद कहने लग गए कुछ नहीं वहां, जब पहले झूठ बोला, जब झूठ बोल दो एक बार तो झूठ बोल ही रहे हो ना। तो बताओ ऐसी धारणाओं वालों का योग और स्थिति किस प्रकार की होगी, ये समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ मुख्य चीजों पर ध्यान दें। बाबा हमें सावधान रोज मुरलियों से भी करते हैं, देखो हमारे वरिष्ठ भाई बहने हमें क्लासेस कराते हैं, उस माध्यम से बाबा हम बच्चों को टचिंग भी देता है, इशारे भी देता है, डायरेक्शंस भी देता है। लेकिन अगर हमारी सूक्ष्म धारणाएं नहीं है, अर्थात इन सब बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ध्यान नहीं देते, तो हम उनको कैच नहीं कर पाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा, जिस दिन प्रैक्टिकल में तुम्हारे जीवन से गीता ज्ञान बोलेगा, उस दिन गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। अदरवाइज तुम कितना भी जोर लगा लो गीता का भगवान सिद्ध करने में, तुम सिद्ध नहीं कर सकते। कब सिद्ध होगा? जब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से गीता ज्ञान बोलेगा। इसलिए हमें अपने संकल्पों की सबसे मुख्य अटेंशन व धारणा, हमें अपने संकल्पों की थॉट्स की क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर और डायरेक्शन पर, तीनों पर ध्यान देना है। मेरी क्वालिटी कैसी है संकल्पों की? और क्वांटिटी बहुत नहीं होती, क्वालिटी हमेशा थोड़ी होती है, क्वांटिटी में क्वालिटी फिर खत्म होने लगती है, और योग में वैसे भी स्लो हो जाती है स्पीड संकल्पों की। इसलिए क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी कम, और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। कभी कभी ट्रैक चेंज हो जाता है, हम अच्छी डायरेक्शन में चलते चलते इधर उधर से कुछ इनपुट, जो बोला ना इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बेस्ड भी हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो हमें योग में बहुत बड़ी बाधा बनती है। लौकिक अलौकिक परिवार में एक अभ्यास आप लोग करके देखो। मैं भैया 11:30 पूरा करूंगी, क्योंकि लेट शुरू की है, 5-7 मिनट और करेंगे। 11:30 से 12:45 आपका ब्रेक होगा, ठीक 12:45 बजे आत्म प्रकाश भाई टोली वाले आएंगे, वो आप सबको क्लास कराएंगे। फिर शाम को 5 से 6 एक बहुत सुंदर, फिर से आपको जीतू भाई क्रिएटिव मेडिटेशन कराएंगे, जिसका विषय है भगवान की नजरों में मैं। वो थोड़ी एक्टिविटी के साथ मेडिटेशन होगी, मतलब ऐसे सीधी कमेंट्री नहीं, लेकिन एक्टिविटीज के माध्यम से 5 से 6 मेडिटेशन होगी, 6 से 7:30 फिर डॉक्टर सचिन भाई आपको क्लास कराएंगे। वो बाहर शेड्यूल में भी आपने पढ़ लिया होगा, उनका टॉपिक है साक्षी प्रवाह। वो पहले गलती से संकल्प प्रवाह लिखा गया था, तो एक्चुअल टॉपिक है साक्षी प्रवाह, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो योग भी कराएंगे और क्लास भी कराएंगे, इसलिए हर क्लास में हमें बहुत एक्टिव रहना है जी। हाँ आज रात्रि में, सॉरी, हाँ वो भी आज की डेट की ही है, 8:30 से 9:30 इसी हॉल में। फिर सूर्य भाई साहब की, जो आप सबने इच्छा रखी थी और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया था, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं जब धारणाओं की। तो आज की दुनिया में ना कोई हमारे अंदर कला है, कुछ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो आपने पकौड़े बनाए, बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनाए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे मास्टर शेफ बैठे हैं बनाने वाले, लेकिन सबके साथ मिलके बनाए, बाबा की याद में बनाए, आत्मा समझ के बनाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ज्यादा स्वादिष्ट सिर्फ ध्यान दिया था ना, वो लोगों को दे बान में ले आएंगे पकौड़े आपके, आत्म अभिमानी बनाने की बजाय। तो इसलिए टीम वर्क की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, ब्राह्मणों को यही तो एक संसार को सबूत देना है कि हम सब कैसे एक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। बाबा की मुरली में मैं मुरलियों की बहुत गहन स्टडी करती हूँ और उसी में से ही आपसे बातें कर रही हूँ। कुछ दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा, गुणवान और खुशबूदार बच्चों को देख बाप दादा के, इसको याद है, नयन गीले हो जाते हैं। शायद आप उतना ध्यान से मुरली को नहीं पढ़ सुन पाते हैं। बाबा ने कहा, गुणवान खुशबूदार बच्चों को देख मेरे नयन गीले हो जाते हैं। ये धारणा की बात है या नहीं? बाबा को चाहिए गुणवान बच्चे, धैर्यवान बच्चे, जिनके अंदर वैल्यूज की खुशबू हो, बाबा के प्यार की खुशबू हो, शांति की खुशबू हो। तो इसलिए बाबा के उसको अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं ना, भगवान धरा पर आ चुका है, तो बाबा ने कहा कि तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाओ कि भगवान ने तुम्हें कैसा बनाया है, तो लोग मानेंगे। जैसे पहले गीता ज्ञान की बात की ना, इसलिए लाइफ से लोग मानते हैं, खाली सुनने के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं। फैमिली में रहते हुए तीन बातें आप सबको विशेष ध्यान में रखनी है, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक में। ये तीन बातें सभी लिख लें। पहला है, वी एक्सेप्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं एज इट इज, वो जैसे भी हैं। लौकिक अलौकिक परिवार में मैं उनको स्वीकार करती हूँ। दूसरा, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। तीसरा, हम सब एक हैं। वी एक्सेप्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी आर ज्वाइंट, वी आर कंबाइंड। हो सकता है जो प्रैक्टिस कुछ दिन करके देखो, यस और नो, जो कहते हैं करेंगे वो हाथ उठाओ। सभी अभी से ही अभ्यास, यहाँ बैठे सूक्ष्म लेवल से ही आज से ही ये अभ्यास चालू करो और फिर उसका रिजल्ट देखना एक हफ्ते के बाद। आपको उन्हीं लोगों के साथ जिनसे कोई कंप्लेंट थी या कम अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगने लगेगा। देखो, कल अनीता दीदी ने भी थोड़ा सा कहा कि लौकिक संबंधों को अलौकिक बनाना है, हम अलौकिकता में लौकिकता नहीं लानी। कोई कोई कहता है जी, मेरे को इसने बहन बनाया है, मेरे को इसने फला बनाया है। मैं कहती हूँ, इसने बहन बनाया है तो बाकी उन्हें क्या बनाया है। लौकिक बहन भाइयों को मानो समर्पित भी है, हम उनको तो छोड़ के आगे जहां किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का कुछ जिज्ञासु कुछ भी समझी जाए, लेकिन हम सब सबके लिए एक समान है। हमारे सबके साथ अलौकिक रिश्ते हैं, हम सबकी बहने हैं, हम सबकी माँ हैं, हम सबका सब कुछ है। अगर किसी एक दो को खास मानेंगे तो दूसरों को क्या लाएगा। तो इसलिए हमारे लिए सारे एक समान है, हम सब जगत माताएं हैं, जगत बहने हैं। लौकिक माँ बाप बहन भाई छोड़ आए तो यहाँ आके कोई माँ बाप बहन भाई जगत के रूप में है, लेकिन स्पेशल कोई एक दो को बनाने की बात नहीं है। और मुख्य बात है कि बाबा का जो है ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, लास्ट अध्याय की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो नष्टो मोहा देह देह के संबंधों से ब्राह्मण काफी जल्दी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें नष्टो मोहा किससे बनना है? अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने आइडिया से, अपने ईगो से, अपनी पोस्ट पोजीशन से, अपनी मान शान से। तो ये चीजों से नष्टो मोहा बनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटे मोटे तौर पे तो बहुत सारे लोग संसार में भी ऐसे होते हैं। एक बार एक संत, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले भी कुछ समय बहन जी आप सबसे मिले, तो लेकिन एक लास्ट बात सुना करके पूरा करती हूँ। एक बार एक संत कोई कह रहे थे कि एक व्यक्ति अगर तीन चीजों पे कंट्रोल कर ले या त्याग कर ले, तो भगवान का रूप बन जाता है, देवता बन जाता है। उसने बोला, उसकी भाषा में बता रही हूँ, फिर बाबा का एक्सप्लेन करेंगे। दौलत, शोहरत, औरत। औरत माना वो बाबा ने हमें सिखा दिया ना ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहा, और दौलत धन दौलत। तो दौलत औरत ये आसान है, ब्रह्मचर्य अपना ली आसान है। दुनिया में आप देखो पॉलिटिशियन होंगे, करोड़ों रुपया लगा देंगे एक MLA की टिकट लेने के लिए और जीतने के लिए। दौलत भी वो खुली लगा सकते हैं, घर परिवार से भी वो 6-6 महीने दूर रह सकते हैं, बड़े मिनिस्टर की मंत्रियों की हाजिरियां भरने के लिए। घर में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, परिवार को कहेंगे आप पे निपट लेना, नष्टो मुआ भी हो जाते हैं दे दे के संबंधों से, ये बाहर के लोग भी हो लेते हैं। किस लिए? तीसरी चीज के लिए, शोहरत के लिए, मान शान ये सब चीजें। तो इसलिए इन चीजों से नष्टो मुहा जब हम बन जाते हैं ना, तो हमारी बाकी सारी धारणाएं बहुत सहज हो सकती हैं। बाकी तो बाबा ज्ञान का सागर है, हम उसके बच्चे मास्टर सागर है, तो कितनी भी बातें करते रहो लेकिन समझदार ब्राह्मणों को थोड़े में ही काफी हो जाता है। और भाव अर्थ हम सबने समझ लिया है, आप भी इसको और चीजें ऐड करके अपनी सूक्ष्म धारणाओं की एक लिस्ट बनाओ और फिर उसको टिक मार्क करो कि कौन सी मेरे जीवन में है कौन सी नहीं है। बस अपने पर काम करना है, किसी दूसरे को देखना नहीं, दूसरे पर काम नहीं करना। ठीक है, ओम शांति। बस अभी गो सुन कम सुन, जल्दी जल्दी जाएंगे, शायद नींबू पानी मिलेगा, शरबत नींबू पानी जो भी मिलेगा वो पी करके फिर वापिस लौट के आएंगे, ठीक 12:15 पहुंच जाएंगे। आतम भाई साहब आ चुके हैं यहाँ, तो वो 12:15।
ओम शांति। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी एक हाथ की ताली बजा करके दीदी का अभिवादन करें, शुक्रिया करें कि दीदी ने बहुत सुंदर हमें सूक्ष्म धारणाएं, छोटी छोटी धारणाएं जो होती हैं उससे हमें जीवन में कैसे हम अपनी उन्नति को पा सकते हैं, दीदी ने बहुत सुंदर अपना हम सबके बीच में ये अपना उद्बोधन रखा, क्लास रखा। दीदी का बहुत बहुत फिर से थैंक्स।